तो अगली चीज क्या है अलामत सुगरा में कि क्यामत के करीब क्या मामलात होंगे। पेज नंबर 130 है। कसरतुल माली, माल की कसरत हो जाएगी। कसरत माल क्यामत की अलामतों में से है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत कायम न होगी हत्ता के माल की कसरत हो जाए, फितने जाहिर हो और हरज बहुत ज्यादा हो। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह हरज क्या है? आपने 3 मरतबा फरमाया, कत्ल कत्ल कत्ल। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। क़यामत के करीब दौलत किस कदर फरावानी होगी, यानी कसरत होगी, कि बकरियां चराने वाले बड़े बड़े महल्लात तामीर करेंगे। यानी वो लोग जिनके पाँव में जूते भी नहीं होते थे, नबी सल्लम जिस वक्त ये बात करते थे तो अरबों की यही हालत थी, लेकिन वो बड़ी बड़ी इमारतें और महल्लात बनाएंगे। क़यामत के करीब जमीन सोने और चांदी के खजाने उगल देगी, लेकिन इन्हें लेने वाला कोई ना होगा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ज़मीन अपने जिगर गोशे सोने और चांदी के सतूनों की शक्ल में निकाल कर बाहर फेंकेगी। सोचिए, यानी ज़मीन में से पहाड़ के पहाड़ बरामद होंगे सोने और चांदी के। चोर आएगा और कहेगा, हाय अफसोस, इसके लिए मेरा हाथ काटा गया। यानी क्या कहेगा कि वो खजाना जो आज ऐसे सड़क पे पड़ा हुआ है, मैंने क्यों चोरी की और मेरा हाथ कटा। कातिल आएगा और कहेगा, हाय अफसोस, इसके लिए मैंने कत्ल किया। कातिर रहम आएगा और कहेगा, हाय अफसोस, इसकी खातिर मैंने कतर रहमी की। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम देखिए कि माल कमाने में रहते हैं और रिश्तेदारियों के नहीं निभाते, या बाज़ दफ़ा भाई बहनों के जायदादों के चलते रहते हैं सिलसिले, तो कतर रहमी का जरिया माल बन जाता है, बाद में अफसोस होगा। और तमाम इसे यूं ही छोड़ देंगे, इनमें से कोई भी इसमें से कुछ ना लेगा। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। कितनी बड़ी सच्चाई है। और आप खुद सोचे कि जब कोई चीज़ थोड़ी होती है ना तो उसकी सबको वैल्यू होती है, लेकिन जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसकी वैल्यू नहीं होती। घर में जो चीज़ थोड़ी सी होती है ना सब चाहेंगे, और कोई चीज़ बच जाए आगे से आगे बढ़ती रहे तो कोई इसकी तरफ नज़र नहीं भरता। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन की तहों में सोना चांदी रखा है, क़यामत के करीब ये सब खुल के सामने आ जाएगा। दौलतमंद लोग सदका खैरात देने के लिए लोगों को बुलाएंगे, लेकिन सदका लेने के लिए कोई नहीं आएगा। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले माल इस कदर भर जाएगा कि दौलतमंद सोचेगा कि इसका सदका कौन कबूल करेगा। वो किसी आदमी को सदका लेने के लिए बुलाएगा, लेकिन वो कहेगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। ये मुस्लिम की रिवायत है। और इसी तरह एक और रिवायत है मिलती जुलती अबू मूसा रजी अल्लाह अन्हु से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि आदमी सोने का सदका लेकर फिरेगा, लेकिन इसे कबूल करने वाला कोई ना होगा, और एक एक मर्द के साथ 40-40 औरतें होंगी जो इसकी पनाह हासिल करेंगी। ये मर्दों की किल्लत और औरतों की कसरत के सबब होगा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। ये कैसे होगा, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, आज दुनिया में जहाँ जहाँ भी जंगें लगी हुई हैं, आप देखते हैं कि जंगों में अमूमन कौन शरीक होते हैं? मर्द होते हैं। जितने लोग मोस्टली जंगों में मरते हैं वो मर्द होते हैं। हादसा जो होते हैं रोड पे, जो ट्रैफिक के हादसा होते हैं, अमूमन उसमें कौन मरते हैं? मर्द मरते हैं। यानी टोटल देखा जाए तो दुनिया में मर्दों की तादाद हर दौर में कम रही, बल्कि आज से शायद 4-5 साल पहले मैंने जब अमेरिका में एक क्लास ली थी तो उसमें एक रिपोर्ट पढ़ के सुनाई थी। असल में वो पॉलीगैनी पे थी कि एक मर्द की एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त क्यों है। तो उस पर बताया था कि इनके अमेरिकन्स के अपने फिगर्स हैं कि अगर आज दुनिया में जितने औरतें और जितने मर्द हैं सब की शादी कर दी जाए, यदि एक मर्द एक औरत, एक मर्द एक औरत, लड़का लड़की, तो उसके बावजूद शायद कितने बिलियन औरतें बिन ब्याही बैठ जाएंगी जिनके लिए मर्द ही नहीं है। तो बाज़ दफ़ा ऐसे हालात बन जाते हैं कि इस्लाम एक से ज़्यादा शादियों की इजाज़त देता है, तो लिहाजा ये चीज़ आपको दिखती है। और इसको आप ख़ुद भी देखिएगा, आप अपने ख़ानदानों में देखें, बेटियाँ ज़्यादा होती हैं बेटे का रेशो देख लीजिए। अक्सर आप बारात जाके ये कर लीजिए एक्टिविटी, अपने सारे ख़ानदान, मैका, ससुराल और इसी तरह से दूसरों को जाके देखिएगा तो आपको साफ महसूस होगा कि घरों में बेटियां ज़्यादा होती हैं। शायद बेटों की मांग ज़्यादा होती है या तलब ज़्यादा होती है। बेटियां भी, ये हमारे यहाँ एक असूल बना हुआ है कि बेटियां रहमत हैं और बेटे फजल हैं, दोनों ही है। देखिए, दोनों दोनों है। आज सुबह की क्लास किसने ली है? क्या होती है औलाद? इन्नमा मिन अम्वालिकुम व औलादिकुम फितना। बेटा हो के बेटी बराबर है। ये हमारा एक कल्चर का एक हिस्सा बन गया कि बेटी को पीछे कर देते हैं, वरना दोनों बराबर हैं। और जो बेटियों ने काम किए हैं, अब तारीख पढ़ लें, लैसा ज़करु कल उन्सा के लफ्ज़ आते हैं सूरत आल इमरान में, कि लड़का लड़की जैसा कैसे हो सकता है। मतलब यह कि अल्लाह ने जो काम इस बीबी मरियम से लेना है, ये लड़के से तो नहीं ले सकता। मुराद क्या था कि बिन बाप के इससे बच्चा पैदा होगा। तो लिहाजा यहाँ क्या पता चलता है कि दुनिया में मर्दों की तादाद कम होगी और औरतें ज्यादा होंगी। फिर अगली अलामत क्या है? कसरतुल किज़्ब, झूठ की कसरत होगी। क़यामत से पहले झूठ कसरत से बोला जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी जब तक फितने जाहिर ना हो, झूठ की कसरत हो जाएगी, तिजारती मराकज़ आम हो जाएंगे, वक्त घट जाएगा, हरज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अर्ज़ किया गया कि हरज क्या है? तो आपने इरशाद फरमाया, कत्ल करना। इसे अहमद ने रिवायत किया। तो आज झूठ आम है। चलिए, पहले तो झूठ कुछ और तरह से था ना, आज क्या है? झूठी कहानियाँ, फिक्शन, झूठे ड्रामे, झूठी फिल्में, झूठे नावल, झूठ झूठ झूठ। आज देखिए, जितना प्रिंट मीडिया है या जितना भी इंटरनेट और इसी तरह से एंटरटेनमेंट के नाम पे, ये क्या है? झूठे किरदार, सब कुछ झूठ है। तो ये इस तरह से झूठ जिंदगियों में बस गया है कि लगता है कि अब ये झूठ ही नहीं रहा। एक और हदीस सुनिएगा, क़यामत से पहले झूठ की इतनी कसरत होगी कि पढ़े लिखे लोग झूठ घड़ के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, आखिरी ज़माने में ऐसे मक्कार और झूठे लोग पैदा होंगे जो ऐसी हदीसें बयान करेंगे जो ना तुमने सुनी होंगी ना तुम्हारे आबाओ अजदाद ने सुनी होंगी। खबरदार, ऐसे लोगों से बच के रहना, कहीं तुम्हें गुमराह ना कर दें और फितनों में मुब्तला ना कर दें। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। तो आज आप देखिए, ये तो बात करें तो लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि हदीस भी ज़यीफ़ है, ये कैसे हो सकता है कि गरीब रिवायत है। लेकिन ये इल्म वालों की बहसें हैं। आपको पता है कि आज के दौर में अल्लाह सुबहान तआला ने नासिरुद्दीन अल्बानी रहमहुल्लाह को चूज़ किया। आज से कोई 8-10 साल पहले उनका इंतकाल हुआ है। उन्होंने नबी सल्लम के नाम पे जो हदीसें लोगों ने घड़ी, उनको छांट के अलग कर दिया। आज भी हदीस सहीहा और हदीस दईफा के नाम पर उनकी दो किताबें हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब भी अल्लाह का नबी कोई दुनिया में आता है, तो उस वक़्त तो हर चीज़ उसकी जगह पे होती है, लेकिन बाद में लोग फिर उसमें चीज़ें घड़ देते हैं। जब दीन इस्लाम मक्का मदीना अरब की हद से आगे गया, ख़ास तौर में जब कूफा में गया, इराक, ईरान और वहाँ के लोग, तो वहाँ लोगों ने नबी सल्लम के नाम पर कई हदीसें घड़ के डाली थी। अल्लाह का वादा है कि जिस तरह कुरान में कोई नक्स नहीं है, कुरान में कोई तब्दीली नहीं कर सकता, इस तरह नबी सल्लम की हदीसें भी महफूज हैं। हर 100 साल के बाद अल्लाह ताला किसी न किसी ऐसे मुजद्दद को भेजता है कि जो फिर हदीसों को अलग करता है। ये बात ना मैंने पढ़ी ना आपने पढ़ी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो मौका मिला, मैंने तो सिर्फ आपको एक ऐसे अपने साथ लेके बात कर दी। लेकिन पढ़ के देखिए, आज भी लोग इस पे हैरान हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम की जो शख्सियत है, उसकी बातों को सबसे ज़्यादा पढ़ा गया। साइंसेज ऑफ हदीस या हदीस साइंसेज एक बाकायदा किताब है, बाकायदा आप कह लीजिए सब्जेक्ट है। तो अल्लाह के नबी की बातों को छान फटक के रखा गया, इसलिए कभी भी कहीं भी कोई बात हो तो बगैर किसी रिसर्च के, तहकीक के, ये ना कहा करें कि ये ठीक है या ये गलत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें खालिस और निथरा हुआ इल्म लेने और देने वाला बना दे। अगली अलामत है कसरतुल खदात, कसरत फरेब, यानी धोखे बहुत देंगे लोग, फ्लर्ट और इसी तरह से लोगों को इधर उधर करेंगे। क़यामत के करीब धोखा और फरेब आम होगा। झूठे लोगों को सच्चा और सच्चों को झूठा कहा जाएगा। सच है, खाइन लोगों को अमानतदार और अमानतदार लोगों को खाइन समझा जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, अन करीब लोगों पर ऐसा वक्त आएगा जिसमें हर तरफ धोखा ही धोखा होगा। झूठे को सच्चा समझा जाएगा और सच्चे को झूठा समझा जाएगा, खाइन को अमानतदार और अमानतदार को खाइन समझा जाएगा, और रुवैबज़ा खूब बोलेगा, यानी लफ्ज़ देखिएगा अगर आप अरबी में तो रुवैबदा। अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह ये रुवैबदा क्या है, कौन है? तो आपने फरमाया, आमतुन नास के मामलात पर इख्तियार रखने वाला कमीना आदमी। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। मुराद यह है कि जो लोग किसी भी जगह बड़े बनाए जाएंगे, वो अपने ओहदों का गलत इस्तेमाल करेंगे। आज आप देख लीजिए कितना धोखा है, सच के नाम पे झूठ है। और आज जो सच्चा होता है उसको लोग झूठा कहते हैं, और जो झूठ बोलता है वो अपनी चर्ब जुबानी से बहुत सच्चा बना होता है। तो हम सबको इस चीज़ की दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह हमें धोखे देने वाला भी ना बना और ना हम धोखा खाएं। घर से निकलते हैं तो कौन सी दुआ मांग के निकलते हैं? एक तो बिस्मिल्लाह ही तवक्कल तो मांगते हैं ना, एक और भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका अन अदिल और उदल और अजिल और उजल अजहिल और युजहल और असलम मौजलम अली। तो उसमें आप देखेंगे कि हम ये कहते हैं कि अल्लाह ना मैं किसी को धोखा दूँ ना कोई मुझे बहकाए, ना मैं किसी को बहकाऊँ ना कोई मुझे बहकाए। तो ये दुआएं भी इंशाल्लाह हमें इन सारी चीज़ों से बचाएंगी। ख़ास तौर पे आप देखिए बाज़ ख़वातीन बड़ी जज्बाती होती हैं, शॉपिंग करने जाती हैं, धोखे में आ जाती हैं, सस्ती चीज़ महंगी ले आती हैं, सोना समझ के पीतल खरीद लाती हैं, कई चीज़ों को इस तरह से करते हैं। तो दुआएं मांगेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें ऐसी चीज़ों से बचाएगा। अब अगली बात जो है वो ख़ास तौर पे आप सब मजबूर हो जाएंगे कि इसकी तस्दीक करें, और वो क्या है? कसरतुल अगानी वल मआज़िफ, गानों और आलाते मौसीकी की कसरत। समझ गए, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की कसरत होगी। अब ये सुन के आपको तो लगेगा हाँ इट्स ट्रू, लेकिन ज़रा सोचिए कि अल्लाह के नबी उस दौर में ये बात बता रहे हैं कि क़यामत के करीब गाने और मौसी के आलात आम हो जाएंगे, जबकि इसका कोई इतना रिवाज नहीं था। तो ये किसने आपको बताया होगा? अल्लाह के नबी को अल्लाह सुबहान तआला ने बताया होगा। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों को सुनते वक्त हम फिर दिल से अल्लाह के नबी की मोहब्बत महसूस करें कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अल्लाह के नबी पर दुरूद दिल से पढ़ें और इस बात की दुआ करें कि हमें अपने नबी की कदर करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। आइए इसकी भी ज़रा हदीस पढ़ लेते हैं। क़यामत से पहले गाने बजाने की कसरत होगी। हज़रत सहल बिन साद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी ज़माने में खसफ, कज़फ और मसख होगा। अर्ज़ किया गया कि या रसूलुल्लाह ये कब होगा? आपने इरशाद फरमाया, जब गाने बजाने के आलात और गाने बजाने वाली औरतें जाहिर होंगी, नीज शराब को हलाल समझ लिया जाएगा। इसे तबरानी ने रिवायत किया। अगली रिवायत पढ़ें फिर मैं इसको इकट्ठा वाजे करूंगी आपके सामने। अबू मालिक अलअशरी कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग शराब पियेंगे लेकिन इसका नाम कुछ और रख देंगे, यानी इसको शराब नहीं कहेंगे, कोई और नाम, बियर, वाइन, आबे जू, यानी बड़ा लाइट सा नाम रख देंगे कि ये शराब नहीं है। इनकी सरपरस्ती में बाजे बजेंगे, गाने वालियाँ गाएंगी, अल्लाह ताला इन्हें ज़मीन में धंसा देगा और बास को बंदर और खिंजीर बना देगा। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया। अब आज इन दोनों चीज़ों को देखिए तो क़यामत के फितनों में से एक बहुत बड़ा फितना गाना बजाना है। कोई खुशी, और मैं तो कहूँगी कि आज कोई गम भी इससे खाली नहीं है, कहीं गानों के नाम पे तो कहीं कवालियों के नाम पे तो कहीं राग रंग के नाम पे। इतना ज़्यादा आज इस कल्चर को आम किया गया कि छोटे बच्चों के खिलौनों में म्यूज़िक है। कभी आपने सोचा? इस पे बहुत ज़रूरत है बात करने की, क्योंकि हदीस में भी आता है और इब्ने मसूद का कौल है एक कि गाना बजाना दिल में निफाक पैदा करता है, हिपोक्रेसी। अगर आप गाने सुनते हैं ना तो कुरान की मोहब्बत आपके दिल में नहीं ठहरेगी। बस लोग कई दफ़ा ये सिलसिले शुरू करते हैं कुरान पढ़ने के, कुरान हिफ्ज़ के, तर्जमे के, फिर छोड़ देते हैं। अगर आप उसकी गहराई में जाके देखेंगे ना तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि गाने नहीं छूटते। एक बर्तन में गर्म और ठंडा इकट्ठा नहीं रह सकता ना, इस तरह कुरान की मोहब्बत और गाने की मोहब्बत इकट्ठी नहीं रह सकती। इसलिए इसको चेंज करने की ज़रूरत है। अब आप कहेंगे हम तो नहीं सुनते, तो आप इस उम्र में सुन के करेंगे भी क्या, आपके तो जज्बे ही मर गए हैं। जब जज्बे जवान होते हैं फिर ही गाने लोग गाते हैं, ये अलग बात है कि अब इस उम्र में बुढ़ापे वाले कोई गाने गा ले। खैर माइंड ना कीजिएगा, ये मैंने आपको फ्रेश किया है, आप में से कोई बूढ़ा नहीं है मेरी नज़र में। लेकिन आप देखिए कि हमारे बच्चे हमारे घरों में इस चीज़ को कम करने की ज़रूरत है। अगर आप इसके बारे में मज़ीद मालूमात लेना चाहें तो सूरत लुकमान की आयतों में वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस, इसी तरह सूरत नजम की आखिरी आयतों में कुरान पाक में इस मौजू पे बात होती है। इसी तरह सूरत बनी इसराइल में शैतान की आवाज़ के नाम पर एक बात होती है। तो इन हिस्सों को सुनिए तफसीर में से जाके, और इंशाल्लाह आप दौरे कुरान में तो सुनना ही है ना, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इससे रोके। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों, क्या हर्ज है? आज लोगों ने इसको जायज़ भी करार दिया, कोई बात नहीं, ये तो म्यूजिक ऑफ द सोल है और हवाएं भी तो गुनगुनाती हैं और परिंदे भी तो चहचहाते हैं। तो आप देखिए कि इंसान के जज्बात भड़कते हैं इससे। आप खुद अपना कोई जाहिलियत का दौर याद करें, जब आप कुरान से इस तरह करीब नहीं थी तो क्या गाना सुन के आपके दिल पे असर नहीं होता था? सैड सॉन्ग सुने तो दिल उदास हो जाता है, रुखसती का गाना सुन के आंसू क्यों आ जाते हैं, माँ की मोहब्बत में दिल क्यों तड़पने लगता है गाने सुन के? इतना ज्यादा असर होता है कि आपको पता है कि पिछले दिनों किसी ने भेजा कि एक सेब है, तो उन्होंने आजकल तो आप देखिए ना कि बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजीज भी तो आ गई हैं, तो उस सेब के पास उन्होंने म्यूजिक चलाया कुछ खास अरसे तक, और एक सेब ऐसा था जिसके पास कुरान की तिलावत चलाई, और जो म्यूजिक वाला सेब था वो कुछ अरसे में, अब मुझे सही टाइम याद नहीं है क्योंकि मेरे पास एक प्रेजेंटेशन शायद कहीं होगा भी, अगर साथियों में किसी के पास हो तो ज़रूर उसको शेयर करें, तो उसने बताया हुआ था कि जितना म्यूजिक उस सेब पे सुना गया वो बिल्कुल जल के काला हो गया, और जो सेब था जिसके पास कुरान की तिलावत चलाई रखी वो कई महीने तक बिल्कुल फ्रेश रहा। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नल क़ुलूब, जान लो कि अल्लाह की याद से दिलों को सुकून मिलता है। इसी तरह मुझे अभी चंद दिन पहले किसी जगह, पता नहीं कौन सा शहर था, अमेरिका की ऑफ कोर्स की होगा क्योंकि पुरानी याद थी, तो एक सिस्टर का फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि मैं आपकी क्लास में सुन रही थी, यही बात हमने उसमें बताई कि बैक ट्रैक करके दिखाया, जैसे आपने बहुत मारूफ बच्चों के नशीद सुने होंगे ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार या वो जो हम्टी डम्टी कुछ इस किस्म के, तो बाद में किसी ने इसको बैक ट्रैक किया, बल्कि हमने लाइव सेशन अटेंड किया था, एक ब्रदर है कैलिफोर्निया में, शायद उनका नाम अब्दुल्ला था, खैर नाम जो भी हो, तो वो पहले म्यूजिशियन थे, गाने बजाने और उनका ग्रुप था, अल्लाह सुबहान तआला ने ऐन जवानी में जब उनका दिल बदला तो उन्होंने म्यूजिक से तौबा की और कुरान की खिदमत में लग गए। उन्होंने, क्योंकि उनके पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कहते हैं कि एक दिन ऐसे ही इत्तफाकी तौर पे कह लें कि जैसे फाइल्स होती है ना, अगर आप में से किसी ने कभी एडिटिंग की है तो वो जानते हैं कि जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो इस तरह वेव्स बनती है ना, तो वो कहते हैं कि इस तरह चलता है तो सॉन्ग है। एक दिन क्या हुआ कि वो जो कर्सर था वो उस पर था तो बैक ट्रैक हुआ, तो उसमें से आवाज़ें आने लग गई। क्या यानी मिसाल है कि सॉन्ग कुछ भी है, अब उसके बोल है, लेकिन जब उसको बैक ट्रैक किया गया ना तो उसमें से शैतानी आवाज़ें आ रही थी, देर इज़ नो गॉड, देर इज़ नो गॉड, देर इज़ नो गॉड। तो वो सिस्टर जो मुझे अभी ये चंद दिन पहले पता नहीं किस जगह से उन्होंने बात की है, तो वो कहती हैं कि हमने आपका ये लेक्चर सुन के इस चीज़ को भी, मेरे बेटे ने और बहुत सारे इंग्लिश गानों पर बैक ट्रैक किया है तो बिल्कुल ऐसी आवाज़ें आई हैं। जी आपके बच्चों ने भी किया था, देख लीजिए, यानी ये हकीकत है। एक बच्चा था तो अमेरिका की ये बात है, उसने अपने स्कूल में दूसरे बच्चे को मार दिया, दोस्त को या साथी को भाई को, तो डॉक्टर्स और सारे जो आ जाते हैं चेकअप करने, उन्होंने उस बच्चे के बिहेवियर को गौर किया, फिर उन्होंने पूछा कि ये क्या करता है, तो उन्होंने कहा ये एक गाना बहुत सुनता था, कहा कौन सा गाना है, जब वो गाना सुना और उसको बैक ट्रैक किया तो उसमें कहता किल मी किल मी किल मी, मुझे मारो मुझे कत्ल करो, तो फिर उन्होंने कहा कि इस बच्चे को इतने हिडन मैसेजेस मिले हैं किल्मी के कि इसने उस बच्चे को मार दिया। हमें नहीं पता हमारी औलादें किस नासूर में पल रही हैं, और ये म्यूज़िक तो यकीन करें कि कानों का कैंसर है, इसको कैसे बदले? अब आप आज जाके बच्चों के पीछे चढ़ जाएं, ये करो वो करो, नहीं, ऑलवेज ऑल्टरनेट दें, जिसको खूबसूरत चीज़ मिल जाती है फिर वो कम खूबसूरत चीज़ की फिक्र नहीं करता, तो अच्छे तरीके से उनका माहौल बनाएं, खूबसूरत तरीके से उनको कुरान अच्छी आवाज़ों में सुनाएं। एकदम कुरान पे नहीं आते ना तो चलें बगैर म्यूज़िक के अगर उनको कोई नशीद सुनाते हैं हल्के फुल्के, ये नहीं कि हर वक्त यही कुछ होने लग जाए, हल्का सा टेस्ट चेंज करते हुए उनको अच्छी आवाज़ें सुनाएं, फिर कुरान सुनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इससे फ़ायदा होगा। और ये जो फिर हिडन मैसेजेस होते हैं ना गाने के बाद ही, तो फिर दिल जाता है किसी से मोहब्बत करें। भाई फिल्म में हर हीरो की हीरोइन है तो मेरी हीरोइन किधर है, हीरो है तो मेरा हीरो किधर है, फिर यंग उम्र में बच्चियों बच्चों में ये जज्बात भड़कने लगते हैं और फिर वो जा जाते अपने वैलेंटाइन बनाने लग जाते हैं और इस तरह की अपनी बडीज बनाते हैं, तो ये एक पूरा कल्चर है, ये क़यामत का बहुत बड़ा फितना है, इसलिए हमें इससे अपने आप को भी और अपनी नस्लों को भी बचाने की कोशिश करनी है। फिर आप देखिए कि इन दोनों रिवायतों में तीन लफ्ज़ थे, खसफ़ कज़फ़ और मसख़, ये क्या होता है? खसफ क्या होता है? ज़मीन फटे और उसके अंदर घर समेत आप गिर जाएं। और क़यामत के करीब ऐसा होगा, ज़मीन फटेगी, पूरे के पूरे गांव और शहर उसके अंदर चले जाएंगे। इसी तरह मसख के शक्लें सूरतें बदल जाएं। हम में से जिन्होंने भी कुरान पढ़ा है उनको पता ना कि बनी इसराइल के एक ख़ास गिरोह को अल्लाह ताला ने उनकी शक्लों को बंदर बना दिया था। रिवायात से यहाँ तक मिलता है कि उम्मत मुस्लिमा में कुछ लोगों की शक्लें खिंजीर और सुअर की बन जाएंगी। और तवील रिवायत पढ़ के देख लीजिए तो उसमें आता है कि जब गाना बजाना आम हो जाएगा। इस तरह के हालात होंगे तो हम सब इस चीज़ से बचें। फिर आप देखिए कि यहाँ इसमें गाने बजाने के साथ शराब का तस्करा, ये दोनों चीज़ें आम होंगी। जहाँ तेज़ म्यूज़िक होगा वहाँ वाइन भी होगी। नाइट क्लब में क्या होता है, पार्टीज़ में क्या होता है, आप म्यूज़िक बंद करते हैं लोग सोचते हैं कि इसका मतलब यह क्या फ़न ख़त्म हो गया। फिर ख़ासतौर पर अगर आप ये आखिरी जो रिवायत हमने पढ़ी है कि इनकी सरपरस्ती में गाने बजेंगे और गाने वालियाँ गाएंगी, अगर आप हदीस को देखें ना अरबी ज़ुबान में जो लिखी है ऊपर, यूज़फ़ु अला रुहूसिहिम, इनके सरों पर गाने वालियाँ गाएंगी। अब समझ नहीं आती थी पहले लोगों को कि ये कंधों पे या सरों पे गाने वालियाँ कैसे बोलेंगी, आज के हेडफोन ने ये मुश्किल हल कर दी है। कभी बच्चों के कानों में लगे हुए हेडफोन्स को देखें तो क्या कंधों बन के, आपके घर के अंदर साइड टेबल्स के ऊपर अगर स्पीकर्स पड़े हैं और उसमें से म्यूज़िक है तो ये गाने बजाने वालियाँ सरों पर आ गई ना। पहले लोग घबराते थे ये कैसे होगा, अच्छा सिनेमा घर होगा घरों में, पहले कहते थे कि हर घर में सिनेमा होगा क़यामत के करीब, तो आज सिनेमा तो नहीं लेकिन सिनेमे की स्क्रीन छोटी होके हर घर में मौजूद है। और कहीं खबरों के नाम पे, कहीं बच्चों के कार्टून के नाम पे आप देखें कहीं ना कहीं से म्यूज़िक हमारे अंदर आया हुआ है, इससे अवॉइड कीजिए। छोटे बच्चों में इसकी नफ़रत पैदा करें तो आप देखेंगे कि बच्चे हाइपर नहीं होंगे। आज बच्चे इतना सताते क्यों, रोते क्यों हैं, क्योंकि वो इस किस्म की आवाज़ें सुनते हैं। आप अपने बच्चे के पास सुबह शाम की दुआएं चलाएं, कुरान सुनाएं उनको, आप देखेंगे कि उनके अंदर बिल्कुल भी खौफ नहीं आएगा। और बच्चे को अल्लाह की पनाह में दे दें तो आप फील करेंगे कि शैतान भी उसको नहीं बिखा सकता। कसरतुल फुहश व तफख्खुश, बेहयाई और फुहश गोई की कसरत, क़्यामत से पहले फहाशी बेहयाई और फुहश गोई आम हो जाएगी। फुहश किसको कहते हैं, इंडिसेंसी, यानी जैसे आप कहें ना फुहश गंदी चीज़ें, नज़र को भी बुरी लगें और कानों को भी बुरी चीज़ें, यानी वो चीज़ें जिसको इंसान किसी दूसरे के सामने डिस्कस नहीं कर सकता। किताब का सफ़ा है 135, कसरतुल फुहशी व तफाहुश, बेहयाई और फुहश गोई की कसरत। देखिए फुहश किसको कहते हैं, वो गुनाह जिसका असर दूसरे पे भी पड़े। फहाशी क्या है कि जिसकी वजह से सोसाइटी में दूसरों पे भी असर पड़ता है, आप ख़ुद नहीं बुरे बनते। मसलन अगर आप देखिए कि कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता तो उसका ज़ाती गुनाह है, अगर कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसका ज़ाती गुनाह है, लेकिन फहाशी का असर दूसरों पे पड़ता है। मसलन अगर आप बाहर एक गंदी तस्वीर लगा देते हैं तो क्या आप आम देखने वाले उससे मुतासिर नहीं होंगे, तो ये फहाशी कैसे, इसको हम पढ़ लेते हैं। क़्यामत से पहले फहाशी बेहयाई और फुहश गोई आम होगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला बेहयाई और फुहश गो को पसंद नहीं फरमाता। या आपने यूं फरमाया कि अल्लाह ताला बेहया और फुहश गो से बुग़्ज़ रखता है, क़यामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि बेहयाई और फुहश गोई आम हो, क़तअ रहमी की जाए, हमसाये से बुरा सलूक किया जाए, खाइन को अमानतदार कहा जाए और अमानतदार को खाइन कहा जाए। इसे अहमद ने रिवायत किया। क्या इसकी कोई वजाहत की ज़रूरत है, आज कहीं निकल जाएं नज़रें पाक नहीं रहती। कपड़े देख लीजिए बेहयाई वाले, साइन बोर्ड्स देख लीजिए बेहयाई वाले, एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए बेहयाई वाली, टॉक शो देख लीजिए, खबरें देख लीजिए, कहाँ फुहश नहीं दिखता। और जो फुहश गोई है स्टेज ड्रामों में, क्या गंदे लतीफ़े, फिल्मों के नाम पर देखिए, फ़न के नाम पर, कॉमेडी के नाम पे, आज किधर किधर ये बेहयाई नहीं है, घर घर का ये मसला। रिश्तों का तकद्दस ख़त्म हो गया, आप देख सकते हैं कि आज कितनी तेज़ी से रिश्तों का फ़र्क मिट गया। मुझे अच्छी तरह याद आता है कि पहले भी दौर में बुरी चीज़ें तो होती थी, लेकिन जो फ़र्क वक्त के साथ लोगों की बातों से पता चलता है वो क्या, कि पहले घर में हर फिल्म हर एक नहीं देखता था, ये फिल्म बड़ों की वाली है, ये बच्चों वाली नहीं। हालांकि ये एक अलग इशू है कि माँ बाप भी देख सकते हैं कि नहीं, बस चीज़ें पहले साफ पता होती थी कि ये फिल्म अम्मी अबू की है देखने की। कभी भी घर में अगर सारे घर के लोग बैठ के टीवी देखते थे तो बड़े भाई के हाथ में रिमोट कंट्रोल होता था, और ज़रा कोई ऐसा सीन आए तो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता था। आज मेरा ख्याल है बच्चों बच्चों को इससे भी ज़्यादा पता होता है। और फिर हम कहते हैं कि गंदगी कैसे फैले, और घरों में जो गंद है, महरम रिश्तों में जो गंदगी है, जहनों में जो गंदगी है, फ़र्क मिट गया। फिर आप देखिए कि बेहयाई और फुहश के कई इज़हार हैं। औरतों के पर्सनल मैटर्स कभी पहले कोई खोलता था? घर में पता होता था कि किस औरत बहन बेटी को क्या मसला चल रहा है? आज आप देखिए साफ पता है। उस दिन पता नहीं हम कहाँ बैठे थे तो सिस्टर्स अपनी कहानियाँ सुना रही थी कि अब्बा इतनी सख्ती करते थे नमाज पे कि अल्लाह की तरफ से छुट्टी भी होती थी तो अब्बा जी के डर से वजू करके खड़े हो जाते थे, बहन के साथ खड़े हो जाना, कि नीचे बैठ के रोज़ों में रोटी खाते थे। तो घर के बच्चों को ना पता चले, एक बच्चे को पता चला समझे इश्तिहार लग गया। आज क्या होता है? बाप भाई सब पता है सबको,
सोए होते हैं पता ही होता,
कोई पता नहीं, सबको पता है इसके साथ ये चल रहा है मामला जी। अब ये देखिए ना कि ये फर्क हो, आप देखिए कि आप कुछ ऐसी बातें टू मच लगे हैं कि इससे क्या होता है, बी रियलिस्टिक। लेकिन बी रियलिस्टिक और बात है, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। इस पे हमने चंद दिन पहले कई बात की है काफी डिटेल से डिस्कशन में, लेकिन झूठ ना बोले, लेकिन इतनी भी तो खुली बात ना हो कि आप हर बात जो दो बहनें डिस्कस कर सकती हैं भाई बहन करें। एक सिस्टर की बात, वो कहती मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है यानी जिससे मैं दिल की बात करती हूँ मेरा भाई है, जो उस बहन से बातें की जा सकती हैं कहती मैं अपने भाई से करती हूँ, और उसमें इस तरह की भी बातें बता रही थी। तो बहरहाल इन सारी चीज़ों से अपने आप को बचाना चाहिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि हया तो हमेशा खैर लेके आती है, कभी भी बोलें तो सोचें, गंदे लफ्ज़ तो नहीं बोलती। वल्गर टॉक्स, आप और मैं इसमें अपना मुहासबा क्या कर सकते हैं, फ्रेंड्स में बैठ के गंदे लतीफ़े तो नहीं आते, छुपी हुई बातें तो नहीं डिस्कस करते। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो शौहर जो अपनी बीवी की छुपी हुई बात अपने दोस्तों में करे, या बीवी अपने शौहर की अपनी दोस्त की अपनी कोई बात अपनी दोस्त से करे, ये बहुत ही ज़्यादा हद से गिरा हुआ काम है। तो इससे हमेशा बचना चाहिए और ना कभी किसी को टोना चाहिए। क्या होता है क्या हुआ हमारे, आप देखिए शादी के मौके पर कितने छिछोरे मजाक होते हैं, शादी के बाद कितना जीना धोबर करते हैं, इंतहाई बेहयाई की बातें हैं। कभी कोई किसी को कहते वॉशरूम में गए थे तो क्या किया, कितनी गंदी बात लगती है, ताफन उठता है ना, बैड स्मेल बातें होती हैं। तो कभी सहेलियों के साथ ये बातें, दोस्तों के साथ ये बातें, या किसी भी रिश्तेदार से किसी मौके पे देवर भाभी के नाम पे मजाक हो रहे हैं, नहीं करने चाहिए, इससे फहाशी फैलती है। फिर आप देखिए किस किस्म की फहाशी हमारे यहाँ कहाँ फैलती है, शादियों के मौके पर रस्म और रिवाज के नाम पर। शादी हुई, जवान देवर को ला के उसके घुटने पर बिठा देते हैं, अब जब तक पैसे नहीं देगा हम नहीं उठेंगे, भाभी पैसे देगी, वो मैके से साथ पैसे लेके आती है कि इस देवर को उठाना है तो पैसे देने पड़ेंगे, और बहनोई है तो उसकी जूती छुपा रही हैं सालियाँ। किसी को नहीं पता हाथ लग रहे हैं कि गैर महरम रिश्ते हैं, शौहर बेचारे ने तो देखा नहीं होगा, उससे पहले सब लगे हुए मजाक करने, हंसी मजाक, फिर लड़के के दोस्त उसकी होने वाली बीवी के साथ जो बेतकल्फी के मुजाहरे होते हैं, वीडियोज़ बनती हैं, उसकी क्या ख्याल है आपका, फहाशी है? वीडियो मैन दुल्हन के साथ उसके पोस्ट बना रहा है, उसके साथ फोटो सेशंस करवा रहा है, क्या ये बेहयाई नहीं है? यकीन करें अभी मुझे रिसेंटली किसी सिस्टर ने अपनी आंखों से देखा हुआ वाक्य सुनाया था कि मेरे हाथ कांप रहे थे सुनते हुए कि क्या ये हुआ, और ये पाकिस्तान में हुआ कि इस तरह शादी के नाम पे फोटो सेशंस के नाम पे इतनी इजाज़त दे देते हैं माँ बाप कि अपनी अकेली बेटियों को छोड़ दो और वो उनकी इस तरह मॉडल्स की तरह चलते फिरते तस्वीरें बनाएं, और उनके साथ टच कर कर के कहते हैं कि अब ये पोज बनाएं और अब ये चीज़ दिखाएं और अब ऐसे करें, बात को भी कहते हुए शर्म आती है। तो याद रखिए कि जितनी हया होगी अल्लाह उतनी खैर डालेगा। अल्लाह को ऐसे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर आपने ये जुमला गौर से नहीं सुना तो दोबारा सुने कि अल्लाह ताला बेहया और फुहश गो से बुगज़ रखता है, और बुगज़ किसको कहते हैं, एनिमिटी। अल्लाह दुश्मन बन जाता है उस बंदे का जो गंदी बातें करता है। तो हम सब इंशाल्लाह अपने लिए दुआ करेंगे और नियत भी करते हैं कि हमने कभी भी गंदी बात मुंह से नहीं बोलनी। इसी तरह आप देखिए किसी से मिलती हुई अगली अलामत है कसरत ज़िना वल ख़म्र, कसरत ज़िना और शराब। क़यामत से पहले शराब और ज़िना आम हो जाएगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि क़यामत की निशानियों में से ये हैं, इल्म उठ जाएगा, जहालत छा जाएगी, ज़िना आम होगा, शराब नोशी आम होगी, मर्दों की कमी और औरतों की कसरत होगी, हत्ता के 50-50 औरतों के लिए एक मर्द निगरान होगा। इसे बुखारी ने रिवायत किया। अगली रिवायत अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया इल्मे दीन का उठ जाना, जहालत का फैल जाना, शराब पिया जाना और खुल्लम खुल्ला जिना होना क़यामत की निशानियों में से है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। तीसरी दलील قیامت سے پہلے شراب، زنا، ریشم، یاد رکھیے کہ یہ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، اور موسیقی کو شرعی دلائل کے ساتھ حلال اور جائز قرار دے دیا جائے گا۔ ابو عامر الاشری سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے کچھ لوگ زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ لوگ شراب کا نام بدل بدل کر شراب پئیں گے۔ ابو مالک اشری کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، میری امت کے لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے، ان کی سرپرستی میں باجے بجیں گے، گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور بعض کو بندر اور خنزیر بنا دے گا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری دلائل اس میں نے اکٹھے آپ کے سامنے رکھے کہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب یہ کیا بتاتی ہیں، اس کے باوجود پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو جائز قرار دیتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ دو قسم کی چیزوں میں اس چیزوں کو لوگوں نے جائز قرار دیا ہے۔ ایک وہ جو نفس پرست ہیں، جنہوں نے نفس کی خوشی کا ہر سامان جائز قرار دیا اور وہ کیا چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے خوش رہیں۔ ایسے دیندار جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے خوش رہیں، وہ آپ کو ایسے فتوے دیں گے۔ دیکھیں، لوگوں نے تو حلالہ بھی جائز قرار دیا، یہ زنا نہیں ہے کیا؟ اسی طرح آپ دیکھیے کہ لوگوں نے شراب کی کئی متوقع صورتیں حلال قرار دی۔ دوسری صورت جنہوں نے میوزک اور اس طرح کی چیزوں کو حلال قرار دیا ہے نا، وہ کون ہے؟ مذہب کے نام پہ۔ کہتے ہیں نہیں، مذہب کے نام پہ تو کر سکتے ہیں۔ راگ رنگ کا نام نہیں سنا آپ نے؟ ایک بڑا معروف ٹی وی کا پروگرام ہوتا تھا، اینڈ پہ لگتا تھا رات کو، اینڈ پہ پھر وہ ساز کے ساتھ گا گا کے قوالی کے نام پہ۔ تو یاد رکھیے، یہ ساری روایتیں اب ہم نے پڑھی، ان سب کو اگر ہم سامنے رکھیں تو کیا اس کے بعد کوئی گنجائش رہتی ہے اس بات کی کہ ہم کہیں کہ زنا جائز ہے یا اس کو زنا نہ کہو اور شراب جائز ہے؟ اور آج آپ دیکھ لیجئے، گانا، شراب اور زنا، یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ قتل بھی ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ ایک بہت نیک شخص تھا، اور اس کو ظاہر ہے کہ اللہ نے اگر اپنا خوف دیا تھا، اس شہر کی ایک عورت اس کے پیچھے لگ گئی، خوبصورت تھی، ایک موقع پہ کسی بھی بہانے سے اس نے اس کو بلایا اور اپنے گھر میں لے گئی، اور اس کے بعد حالات کچھ ایسے بنا دیے، کہنے لگی کہ میرے ساتھ زنا کرو، یا ایک بچہ تھا وہاں کہ اس کو قتل کرو، اور ساتھ ہی شراب کی بوتل رکھی تھی، یا شراب پیو، اور دروازے بند تھے اور وہ مجبور تھے۔ اب انہوں نے جو بھی پسو پیش کیا ہوگا، بالآخر یہ سوچ کر کہ زنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، قتل یہ تو اور بھی بڑی بات ہے، چلو نسبتاً ہلکی چیز ہے کہ میں شراب پی لیتا ہوں۔ اور جب انہوں نے شراب پی تو شراب کے نشے میں باقی دو کام بھی کر لیے، ام الخبائث کہتے ہیں اس کو۔ چلیے، شراب پیتے تو کم ہی مسلم ہوں گے، شراب بیچنے اور خریدنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بزنس کے نام پہ، سٹورز کے نام پہ، سگریٹ کے نام پہ، کیا مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہے؟ کیا رزاق کے وعدوں پہ یقین نہیں ہے کہ وما من دابت الا علی اللہ رزقها، بارہویں پارے میں سورۃ ہود میں اللہ کہتے ہیں تم کیوں فکر کرتے اپنے رزق کی، رزق تو میرے ذمہ ہے۔ تو ہم سب کو ان سب چیزوں کو کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، کسی بھی جگہ کوئی ایسی چیز اگر آپ کے کاروبار میں آتی ہے تو وہ باقی چیزوں کی بھی برکت ختم کرتی ہے۔ اسی طرح بعض جگہ دیکھا گیا کہ بہت اچھے مسلم حلال میٹ بیچنے والے بردرز، پاکستانی گروسری، انڈین گروسری، یعنی حلال کے نام پہ بیچتے ہیں، لیکن وہاں ساتھ انہوں نے میوزک، گانے، فلمیں، کیسٹ سب رکھی ہوتی ہیں، اور اتنے گندے اشتہار ہوتے ہیں کہ وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا بنے گا مسلمانوں کا؟ آپ دیکھیے کہ ابو جہل کی بات یاد آ گئی۔ ایک دن اللہ کے نبی سے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتہ ہے کہ تو سچا ہے، تیرا دین سچ ہے، لیکن میں کیوں مسلمان نہیں ہوتا؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو مجھے شراب چھوڑنی پڑے گی، مجھے زنا چھوڑنا پڑے گا، مجھے نمازیں پڑھنی پڑیں گی، اور اس طرح کی باتیں کہہ کے کہا میں ابھی ان کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر آپ دیکھیں تو ابو جاہل میں جرات زیادہ تھی، اس نے کہ ان سب چیزوں سے رکنے کے خوف سے اسلام ہی نہیں قبول کیا۔ آج ہم مسلمان کیا سوچتے ہیں؟ مسلمان ہو کے پیو، کافر پیتا ہے تو پکڑا جائے گا، تم مسلمان ہو تو تم بچ جاؤ گے۔ تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں احسان کرے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا اپنے کانوں پہ، مجھے بھی نہیں آیا جب مجھے किसी ने कहा कि अब हमारे अपने मुल्कों की पार्टीज शराब के बगैर नहीं चलती, मीटिंग्स शराब के बगैर नहीं चलती, पार्टीज शराब के बगैर नहीं चलती। कहीं चेन स्मोकर थे तो आज चेन ड्रिंकर ना भी हो, लेकिन सिर्फ कल्चर की बात है। बुरा लगता है अगर हम इधर मना करेंगे, चलो शराब नहीं तो बियर ही दे दो, विस्की दे दो। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको इन सारी चीज़ों से दूर रखे।